Chimes Radio, original podcast.
सातवां अध्याय, खेल शुरू।
क्या?
बेन चिल्लाते हुए लगभग अपनी सीट से कूद पड़ा।
तुम दोनों सच में इस कहानी पर विश्वास करने लगे हो? अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था कि ये वास्तविक कहानी है।
अर्जुन ने फौरन कहा।
हाँ कहा था, लेकिन ये अभी भी एक कहानी ही है, तुम इस पर विश्वास कैसे कर सकते हो?
बेन ने पूछा।
मेरे पिताजी ने भी मुझे बचपन में वे कहानी सुनाई थी, पर तब मैं बहुत छोटा था।
फिरोज ने बिना कोई हरकत किए बहुत शांत स्वर में कहा।
मुझे भी,
अर्जुन बोला।
मैंने भी पहले इस कहानी के बारे में सुना है, लेकिन बेन, जब तुमने हमें इसे बड़े विवरण में समझाया तो बात अलग हो गई, और अब मैं इस कहानी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं।
बेन को पता नहीं था कि ऐसे हालात में क्या कहना चाहिए। वह जानता था कि कहानी एक भारतीय लोक कथा है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वास्तव में ऐसा कभी कुछ हुआ भी होगा। एक बार फिर बेन दूसरों से अलग महसूस करने लगा। वे एक अमरीकी था और भारत में पैदा नहीं हुआ था। उसके पापा भारत में अपनी नौकरी के लिए आए थे और अब वहीं रहने का मन बना चुके थे। यही कारण था कि बेन को यहां स्कूल भी शुरू करना पड़ा था। बेन ने तो अपने दोस्तों को यह कहानी वैसे ही सुनाई थी, लेकिन अब दोनों, अर्जुन और फिरोज, उसे सच मान रहे थे और उनको रातों को कहानी को लेकर के बुरे सपने भी आ रहे थे। वे केवल अपने दोस्तों के और करीब आने की कोशिश कर रहा था। वे सिर्फ भारतीय सभ्यता का हिस्सा बनना चाहता था, जिससे कि उन तीनों की दोस्ती और मजबूत हो जाए।
मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि यह कहानी तुम दोनों को इतना डरा देगी,
बेन ने स्पष्ट रूप से पछतावा जताते हुए कहा। उसकी उदास आंखों ने उन दोनों को बता दिया कि वे सच में नहीं जानता था कि दोनों पर कहानी इतना असर कर जाएगी।
कोई बात नहीं बेन,
फिरोज ने बेन के कंधे को थपथपाते हुए कहा।
तुम नहीं जानते थे।
बेन ने सिर हिलाया, पर तभी बेन के दिमाग में एक प्रश्न आया और उसने पूछा,
अगर तुम दोनों ने यह कहानी सुनी है तो बताओ कि जादूगर से पेड़ क्यों नहीं गिरा?
फिरोज साथ ही बोल पड़ा,
इस हफ्ते मैंने अपने पिताजी से फोन पर इस कहानी के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि कहानी के अनुसार जादूगर के साथ ही दूसरे ग्रह के कुछ और लोग भी जादूगर से छुपते हुए पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने राजा को जादूगर के बुरे विचारों के बारे में बता दिया था और उससे प्रार्थना की थी कि जैसे भी हो जादूगर को हराना बहुत जरूरी है, वरना वे हर जगह तबाही फैला देगा।
साथ ही अर्जुन ने भी कहा।
हाँ, और इसीलिए जब जादूगर आंखों पर पट्टी बांधकर पेड़ को धकेल रहा था तो पूरी मानव जाति ने पेड़ को दूसरी तरफ से सहारा दिया। जादूगर की जादुई ताकत पूरी मानव जाति की क्षमता से कम थी और इसीलिए वे हार गया और मानव जाति का दुश्मन बन गया।
बेन काफी हैरान था और बोला,
अरे वाह, तुम दोनों तो सारी कहानी जानते हो। हाँ बेन, पर तुम्हें इस कहानी से बिल्कुल डर नहीं लगा?
अर्जुन ने बेन से पूछा।
कौन, कहानी से मैं डर गया क्या?
बेन ने दोबारा पूछा।
अर्जुन ने सिर हिलाया, बिल्कुल भी नहीं।
पर बेन ने पूरा सच नहीं बोला था। सच्चाई ये थी कि वे पहले तो नहीं डर रहा था, लेकिन अब कहानी उस पर भी थोड़ा थोड़ा असर करने लगी थी। वे अभी तक नहीं मान रहा था कि ये एक सच्ची कहानी है। उसे लगा कि ऐसी कहानियां अक्सर किताबों में सच्ची कहकर छाप दी जाती हैं, जिससे कि उनका प्रभाव और बढ़ जाए। कई फिल्में और कहानियां ऐसी थीं जिन्हें एक सच्ची कहानी माना जाता था, लेकिन वास्तव में वे बनाई गई होती हैं। बेन ने सोचा कि ये किताब भी वैसी ही है जिस पर सिर्फ लिखने को सच्ची कहानी लिखा गया है। पर अब वे दोबारा सोचने लगा था, क्योंकि उसके दोनों दोस्तों ने भी बचपन में उसे सुन रखा था। बेन को लगने लगा कि अगर कहानी सच्ची है तो हो सकता है कि दार्जिलिंग का जादूगर अभी भी इसी शहर में हो और अभी भी मनुष्यों के बीच में रहता हो।
अगर वे इस शहर या इस स्कूल में भी होता तो क्या होता?
बेन ने सोचना शुरू किया, पर तभी अपने होश संभालते हुए उसने इन विचारों को एक तरफ कर दिया। उसने अपना डर फिरोज और अर्जुन को दिखाने की जहमत नहीं उठाई। तभी रात के खाने के खत्म हो जाने की घंटी बजी। लड़के उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। फिरोज और अर्जुन को अपना राज साझा कर थोड़ा अच्छा लग रहा था। कल एक बड़ा दिन होने वाला था। अगले दिन सभी टीम्स प्रिंसिपल पार्थो के ऑफिस के पास सभा कक्ष में इकट्ठी हो गईं। ट्रेजर हंट शुरू होने ही वाला था। ये शनिवार का दिन था और ट्रेजर हंट पूरे सप्ताह चलना था, जब तक कोई एक टीम जीत ना जाए। इसलिए इस हफ्ते स्कूल की पढ़ाई भी बंद रहने वाली थी। पर सबसे पहले बच्चों को प्रिंसिपल पार्थो के निर्देशों का इंतजार करना था। उनके अनुभव से पार्थो सर के इन निर्देशों में कहीं भी सुराग छुपा हो सकता था जो उन्हें सही दिशा में ले जाता। इसलिए सब जूनियर बच्चे पार्थो सर के बाहर आने का बहुत शांति से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने दूसरी टीमों की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि सभी टीम्स अच्छा ही खेलेंगी, पर फैब टीम के जीतने की उम्मीद ज्यादा थी, क्योंकि वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जो एक बहुत बड़ा फायदा था उनकी टीम के लिए। और ये फायदा अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत से शिवांश सर से जीता था। पार्थो सर का इंतजार करते करते सब सभा कक्ष के चारों तरफ थोड़ी बड़बड़ाहट शुरू होने लगी थी। हर टीम अपनी योजनाओं को फिर से सोचने लगी थी, लेकिन फैब टीम पूरी तरह एकाग्रचित होकर खड़ी थी। उन्हें अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था और अब तीनों दोस्त सभा कक्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वे उन सैनिकों की तरह दिखते थे जो अपने अफसर के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हों। अचानक से प्रिंसिपल पार्थो अपने कार्यालय से बाहर आए और पूरी सभा में चुप्पी दौड़ गई। इतना सन्नाटा था कि अर्जुन अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। उसने अपने साथियों पर नजर डाली और मुस्कुराया।
बच्चों, पार्थो सर ने कहना शुरू किया, मैं तुम सभी का बिशप हाई ट्रेजर हंट प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं।
सभी छात्रों ने तालियां बजाना शुरू किया। ट्रेजर हंट पूरे साल का सबसे अच्छा हिस्सा था और अब वह मौका आ गया था। बच्चों के उत्साह को संभाल पाना अब काफी मुश्किल था।
जैसा कि तुम सब जानते हो, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पहेलियों और चुनौतियों को हल करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना उत्पन्न करना है। इसलिए तुम सभी बिशप हाई ट्रॉफी को खोजने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करोगे,
पार्थो सर ने घोषणा करी। तभी पार्थो सर के इशारे पर एक और अध्यापक ने पास रखी ट्रॉफी की बड़ी सी तस्वीर उठा के बच्चों की तरफ कर दी, जिसे देखते ही बच्चों में एक अजब सी लहर दौड़ गई। ट्रॉफी बहुत सुंदर थी और वे पिछले सालों की तुलना में और भी बेहतर और चमकदार थी। अर्जुन और उसके दोस्तों के मन में अब इस ट्रॉफी को जीतने की चाह और बढ़ गई।
अब तुम्हारे पहले सुराग के लिए मैं एक पहेली सुनाऊंगा और जब तुम इसे सुलझा लोगे तो ये तुमको इस प्रतियोगिता में अगली सीढ़ी की ओर ले जाएगी, समझे?
पार्थो सर ने कहा।
जी सर।
छात्रों ने तुरंत एक साथ कहा।
मैं कुछ समय बात करने के लिए बाकी अध्यापकों के साथ अपने ऑफिस में जा रहा हूं, और अगर तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई सवाल हो तो मैं उनका उत्तर वापस आकर दूंगा।
पार्थो सर ये कहते हुए कुछ अध्यापकों के साथ अपने ऑफिस की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे अपने कार्यालय में दाखिल हुए, सभी बच्चों ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब भी पार्थो सर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले प्रश्नों के लिए समय देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने प्रतियोगिता के पहले चरण के लिए एक सुराग दे दिया है। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर रुख किया।
मुझे लगता है कि प्रिंसिपल सर पहला सुराग दे चुके हैं,
अर्जुन ने तुरंत कहा।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है,
बेन ने कहा।
सर ने अब तक जो कुछ भी कहा है उसे ध्यान लगाकर सोचो। नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। प्रिंसिपल सर ने जो आखिरी बात कही उस पर ध्यान दो। अगर वे कोई सुराग देना चाहेंगे तो यकीनन वह उनके आखिरी बात में ही होगा,
फिरोज ने कहा, और बाकी दोनों ने अपनी सहमति जारी की। वे एक पल के लिए चुप हो गए और प्रिंसिपल सर की आखिरी बात के बारे में सोचने लग गए।
हाँ, मुझे मिल गया है,
अर्जुन ने कहा।
उन्होंने कहा था कि वे हमें बात करने के लिए समय देंगे।
इससे पहले अर्जुन अपनी बात पूरी करता, वे खुद ही समझ गया कि उसकी सोच आगे कहीं नहीं जा रही है और यह सुराग नहीं हो सकता।
नहीं,
बेन ने सोचकर कहा।
उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पहले सुराग के लिए, तो जो कुछ भी उन्होंने उसके बाद कहा वे सुराग है। अच्छा विचार है बेन, अब उन्होंने क्या कहा था,
फिरोज बोला, और सब सोचने के लिए फिर से चुप हो गए।
उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अगले सुराग के लिए मैं एक पहेली सुनाऊंगा और जब तुम इसे सुलझा लोगे तो ये तुमको इस प्रतियोगिता में अगली सीढ़ी तक ले जाएगी। रुको, यही सुराग है,
फिरोज ने उत्सुकता के साथ कहा।
उन्होंने कहा कि जब हम इसे सुलझा लेंगे तो ये हमें हमारी अगली सीढ़ी तक ले जाएगी। सीढ़ी, यही तो है,
बेन ने टोका।
सीढ़ी, वे एक सीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे।
लड़कों ने एक पल के लिए सोचा, पूरे स्कूल में केवल एक ही जगह सीढ़ियां थीं।
पुस्तकालय।